जोहर श्रोताओं, मैं सरस्वती आज लेकर आ रही हूँ पलायन अभियान की आखिरी कड़ी। इस कड़ी के पहले चरण में हम सुनेंगे झारखंड के श्रमायुक्त श्री सुनील कुमार बर्नवाल जी को, दूसरे चरण में सुनेंगे झारखंड के लोगों का क्या कहना है पलायन पर, तीसरे चरण में सुनेंगे बोकारो नावाडी से खास रिपोर्ट, चौथे चरण में सुनेंगे पलायन कर चुके लोगों की खबरों को और पांचवें चरण में सुनेंगे पलायन से होने वाली हानियों पर एक गीत। तो बंधुओं, आइए सुनते हैं पहले चरण में झारखंड के श्रमायुक्त श्री सुनील कुमार बर्नवाल जी को, जो बता रहे हैं पलायन से पहले निबंधन क्यों जरूरी है और अब निबंधन हो गया है बिल्कुल आसान।
झारखंड मोबाइल वाणी के सभी श्रोताओं को सुनील कुमार बर्नवाल श्रमायुक्त झारखंड का नमस्कार। श्रमायुक्त के रूप में मैं सभी झारखंड के वैसे मजदूरों को यह बताना चाहूंगा जो कि राज्य से बाहर जाकर के मजदूरी करते हैं, उनके लिए झारखंड सरकार द्वारा एक विशेष योजना चलाई गई है और इसके तहत उन्हें लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना की जो मुख्य बातें हैं वो यह है कि अब तक जो पलायन करते थे मजदूर, उनके बारे में सरकार के किसी भी अंग को कोई जानकारी नहीं हो पाती थी। तो पहली बार यह योजना लाई गई है कि जो भी मजदूर पलायन करते हैं अपने पंचायत कार्यालय में जाकर अपना पंजीयन कराएं, जहां पे पंचायत के प्रत्येक गांव के लिए एक पंजी संधारित होती है, उसमें नाम दर्ज किया जाता है और साथ में ऐसे मजदूरों को एक पहचान पत्र दिया जाता है। ये पहचान पत्र वो साथ में लेकर के जाएं, ताकि अगर उनके साथ दूसरे राज्य में कहीं कार्य के दौरान या अन्यथा कोई भी घटना घटती है तो झारखंड सरकार इस पहचान पत्र और पंजीयन के आधार पर 1.5 लाख रुपए तक की राशि तक सहायता देगी। मतलब अगर दूसरे राज्य में कार्य के दौरान या अन्यथा प्रवासी मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें 1.5 लाख रुपया उनके आश्रित को दिया जाता है। अगर कोई दुर्घटना में 2 आंख या 2 अंग की हानि होती है तब भी 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। यदि 1 आंख या 1 अंग की हानि होती है तो 75,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके साथ ही साथ वो दूसरे राज्य से उनके घर तक पहुंचाने के जितने भी खर्च होंगे वो सारी राज्य सरकार वहन करेगी। तो ये योजना लागू की गई है और कई लोगों को इससे लाभान्वित भी किया जा रहा है। जरूरत है कि जो भी मजदूर प्रवास करते हैं दूसरे राज्यों की ओर, वो निश्चित रूप से पंचायत में अपना पंजीयन करा के पहचान पत्र ले करके जाएं और जो एजेंट ले जाते हैं मजदूरों को उनको भी अपने पंचायत में इसका लाइसेंस ले लेना, अनुज्ञप्ति ले लेना है। जो बिना एजेंट के माध्यम से जाते हैं वो केवल पहचान पत्र लेके जाएंगे, जो एजेंट के माध्यम से जाते हैं वो एजेंट का लाइसेंस के साथ साथ पहचान पत्र भी लेकर के जाएंगे। झारखंड राज्य में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ काफी संख्या में मजदूर दूसरे राज्यों को पलायन करते हैं और मुख्य रूप से ऐसे सीजन में पलायन करते हैं जब उनका कृषि कार्य नहीं होता है, और पलायन के क्रम में दूसरे राज्यों में वो बहुत सारी योजनाओं से लाभान्वित नहीं होते हैं। अगर इस तरह का जो योजना चलाया गया है इसमें हमें पंजीयन के माध्यम से सूचना प्राप्त हो जाती है कि किसी गांव या पंचायत में काफी संख्या में मजदूर पलायन करते हैं, तो हम कई सरकारी योजनाएं वैसे पंचायत और गाँव को चिन्हित करके चला सकते हैं ताकि मजदूरों को पलायन करने की आवश्यकता नहीं पड़े। और साथ ही ये जानकारी रहने के बाद हम पलायन कर रहे मजदूरों के परिवार, उनके बच्चों के लिए जो शिक्षा एवं अन्य योजनाएं हैं उससे लाभान्वित करने का प्रयास कर सकते हैं और यह कार्य शुरू किया गया है। आने वाले दिनों में इसका काफी लाभ पलायन करने वाले मजदूरों को मिल सकता है। धन्यवाद।
दूसरे चरण में सुनते हैं कुछ तथ्य जिन्हें पेश कर रही हैं पूजा जी।
मैं पूजा कुमारी सेलो बेलकर से नपुरा बोकारो से बोल रही हूँ। आज हमारे गांव में लगभग 3,000 से 5,000 आबादी है, जिसमें से 1 से 2,000 से अधिक आबादी झारखंड से बाहर पलायन करती है। आज झारखंड में लोग रोजगार के लिए पलायन होने पर मजबूर हो रहे हैं। लोगों ने जो सपने देखे थे कि हमें रोजगार मिलेगा, लेकिन किसी का भी सपना साकार नहीं हुआ। हमारे सेलो, चटरी, तांदूरी, तरंगा के लोग भी यहाँ से पलायन किए हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है।
पलायन पर अपनी बात रख रहे हैं जय सरनपुरी जी।
पलायन का दर्द बोकारो जिले के भंडारदा से, मैं पत्रकार जय सरनपुरी। बूढ़ी माँ मंगरी परेशान है, वह लंबे समय से अपने बेटे का इंतजार कर रही है, मगर बेटे को अब पहाड़ों के बजाय महानगरों की चकाचौंध ज्यादा रास आती है। पहाड़ की नई पीढ़ी के पास अब इतनी फुर्सत नहीं कि वह अपने बूढ़े माँ बाप से मिलने एक दिन का भी समय निकाल सके। वे अपनी जड़ों से कट गए हैं और उन्हें उन गलियों की याद भी नहीं आती जहाँ माँ बाप ने उंगली पकड़कर उन्हें चलना फिरना सिखाया और पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि उन्हें दो जून की रोटी मयसर हो सके। उन्हें अब पहाड़ का कष्टप्रद जीवन रास नहीं आता। यह कहानी आज के झारखंड के हजारों गांवों की सच्ची दास्तान बन चुकी है, जो पलायन के चलते धीरे धीरे खाली होने के कगार पर है। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। पिछले कुछ महीनों में झारखंड के गांवों को नजदीक से देखने का अवसर मिला, यह जानकर बहुत पीड़ा हुई कि यहां की नई पीढ़ी अपने गांव से लगातार कटती जा रही है। रोजी रोटी की तलाश में घर से निकला यहां का नौजवान अपने बुजुर्गों की सुध इस दौर में नहीं ले पा रहा है। यहाँ के गांव में कई मकान बुजुर्गों के निधन के बाद सूने हो गए हैं। आलम यह है कि दशहरा, दिवाली, होली तरीके त्योहार पर भी इन इलाकों में उस उत्साह से नहीं मनाए जाते जो बरसों पहले संयुक्त परिवार के साथ देखने को मिलता था। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज पहाड़ के इस इलाके में लोगों ने जहां खेती बाड़ी छोड़ दी है, वहीं पशुपालन घाटे का सौदा बन गया है, क्योंकि वन संपदा लगातार सिकुड़ती जा रही है। माफिया, कॉरपोरेट और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से पहाड़ की सुंदरता पर ग्रहण लग रहा है। वहाँ बढ़ रहे इस पलायन पर आज तक राज्य की किसी भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। शायद इसीलिए अब लोग दबी जुबान से ही पहाड़ी राज्य के निर्माण और अस्तित्व को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। झारखंड को बने 12 वर्ष हो गए हैं, लेकिन यहाँ जल, जंगल और जमीन का सवाल ज्यों का त्यों बना हुआ है। धन्यवाद।
तीसरे चरण में पेश है वासुदेव जी एवं रामेश्वर जी द्वारा पलायन के विषय पर एक खास रिपोर्ट।
मोबाइल के सफर में झारखंड मोबाइल वाणी के द्वारा पलायन अभियान चलाई जा रही है। तो अभी हम बोकारो नवाडी प्रखंड के प्रमुख श्री मोहन महतो से साक्षात्कार के लिए वासुदेव तुरी रमेश्वर महतो है। नमस्कार प्रमुख जी।
नमस्कार।
नवाडी प्रखंड में 3000 मजदूरों की पलायन हो चुका है, इस पर क्या कहते हैं?
ऐसा है, नवाडी प्रखंड में पलायन होने का मुख्य कारण है सबसे पहले कि नवाडी में रोजगार नहीं होने के चलते यहाँ के लोग मजदूरी पलायन कर रहे हैं, क्योंकि नवाडी प्रखंड एक ऐसा पिछड़ा प्रखंड है कि यहाँ पर किसी तरह का खान है और ना किसी तरह का फैक्ट्री है और ना किसी तरह का रोजगार है, इसीलिए लोगों को मजबूरन काम के लिए बाहर जाना पड़ता है।
पलायन रोकने के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं?
सरकार की ओर से तो बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन पलायन रोकने के लिए योजनाएं चल रही है, लेकिन सरकार की और जितनी भी योजनाएं चल रही है वो प्रतिदिन की मजदूरी जो होना चाहिए, सम्मानजनक मजदूरी होनी चाहिए, वो सम्मानजनक नहीं होने के कारण सरकार की मजदूरी को देखिए तो महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ती जा रही है, मजदूरी कम पड़ जाता है और उनका उस मजदूरी से भरण पोषण उनके बच्चे को नहीं हो पाता है, इसके लिए मजबूर होके लोगों को पलायन हो रहा है, मजबूरन पलायन कर रहे हैं। साथ ही सरकार की योजनाएं जितनी भी चल रही है, जैसे अभी हमारे यहाँ चल रहा है मीडिया के माध्यम से हम सभी जनता को पढ़ने को मिलता है, मछली पालन योजना चलता है, मुर्गी पालन योजना चलता है, सुअर पालन योजना चलता है और बहुत सारी योजनाएं चल रही है जो धरातल में सही ढंग से नहीं उतर पा रहा है। इसमें प्रशासन की गलती समझिए, जिस विभाग की गलती समझिए, जो हमारे प्रखंड में इस तरह का किसी तरह का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और न ही किसी तरह का प्रशिक्षण का व्यवस्था की गई है, जो यहाँ के लोग कार्य की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं, इससे वंचित रह जाते हैं।
गांव से लोगों को पलायन लगातार जारी है, इस तरह चलते रहेगा तो पलायन को अगले 5 वर्षों में गांव कैसा देखने को मिलेगा?
गांव में तो पलायन जारी है और चल ही रहा है, देख रहे हैं हम लोग भी, लेकिन गांव में जो पलायन जारी है वह गांव में आने वाले पीढ़ी के बच्चों पर काफी प्रभाव पड़ेगा और पड़ रहा है, क्योंकि जिस जगह के, जिस गांव के हो या जिस घर का गार्जियन नहीं होता है तो घर बिखर जाता है। उसी प्रकार जिस बच्चे का माँ बाप उसके समक्ष ना है तो बच्चे का विकास कैसे हो सकता है और किस तरह होता होगा वो तो आप सभी भी समझ सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में और सारी क्षेत्र में और अपनी शारीरिक बनावट के दृष्टिकोण में कमजोर होते जा रहे हैं और इस स्थिति में किसी भी क्षेत्र में अपना सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं, इसके लिए ये भी एक मुख्य कारण रहा है पलायन के लिए रुकता है। तो इस सब क्षेत्र में भी हमारे बच्चों को भी विकास होगा और अच्छी विकास होगा, तभी हमारे प्रखंड आगे बढ़ सकता है और अच्छी अपना मुकाम हासिल कर सकता है।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख जी, झारखंड मोबाइल रेडियो को आपने साक्षात्कार दिए। नमस्कार, मैं वासुदेव तुरी। अब आइए मिलते हैं बोद्रो के मनोज तुरी से।
सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम मनोज तुरी है।
आप क्या सोचकर प्लान करते हैं?
हमारे यहाँ किसी तरह का रोजगार उपलब्ध नहीं है। पढ़े लिखे होने के कारण हमारे गांव में कोई आदमी हमें काम देता। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जब झारखंड राज्य अलग हुआ तब हम युवा वर्गों के मन में एक आशा का दीप जला कि झारखंड राज्य में कहीं न कहीं नौकरी के लिए बहाली हमें दिया जाएगा। सबसे पहले सरकार के सचिवालय में एक बहाली का वैकेंसी निकला था जिसमें मैंने अपना आवेदन जमा किया, जिसमें कुछ ही दिनों के बाद एक लेटर के द्वारा इंटरव्यू के लिए बुलावा आया। जब मैं सचिवालय का पता किया, अंदर जाने के बाद मैंने इंटरव्यू लेने वाले पदाधिकारी के यहाँ अपना क्वालिफिकेशन रखा और मैंने अपना परिचय दिया। वो पदाधिकारी हम पर हंसने लगा, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने अधिकारी से पूछा, क्या सर मेरा नौकरी पक्का हो गया? उन्होंने जवाब में कहा, ये जो 23 सीट का बहाली है ये तो नेता और मंत्रियों का अधीन है, अगर आपका नेता या मंत्री से संपर्क है तो उससे मिले।
आपके गांव में सरकारी सुविधा क्या क्या मिला?
हमारे गांव में कुछ भी नहीं मिला, ना यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है और ना यहाँ अभियान विद्यालय।
सरकार ने पलायन रोकने के लिए बहुत सी योजनाएं चला रखी है, फिर भी आप पलायन करते हैं?
मैंने तो सरकार के योजना के बारे में टीवी रेडियो समाचार पत्र में योजनाओं को पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने जिस टाइम सरकार नरेगा का योजना चलाती थी उसी समय एक गांव में आम सभा होती है और आम सभा के तहत मैंने एक सिंचाई कूप का गुहार लगाया, लेकिन आज तक कुआं नहीं मिला जिससे मैं खेती कर जीविका उपार्जन कर सकते थे। बाकी योजनाओं का किसी तरह का मालूम नहीं है। अंत में हम रोजी रोटी के लिए पलायन करते हैं।
पलायन में किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ता है?
जब घर से हम निकलते हैं तो सबसे पहले हम घर से निकले और धनबाद स्टेशन गए, वहाँ हम टिकट लिए और टिकट लेने के बाद तिरुपति के लिए हम ट्रेन में जानवरों जैसा सफर करना पड़ा और इसी क्रम में मेरा एक साथी एलूर स्टेशन में भीड़ से धक्का खाने के कारण उतर गया जो आज तक नहीं मिला।
चौथे चरण में सुनते हैं कि क्यों झुक जाता है शर्म से पलायन कर चुके पुनीत जी का सर।
पुनीत मातुक ग्राम खेरागढ़ प्रखंड प्रत्याशी। फिलहाल मैं अभी महाराष्ट्र में हूँ। अभी मैं कोल्हापुर में सेटरिंग और दलिया का काम करता हूँ जिसमें बहुत ही मेहनत का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर 12 घंटे या 18 घंटे की ड्यूटी होती है जिसमें हम लोग पैसा कम से कम 450 तक रोज कमा लेते हैं और झारखंड में सोचा जाए तो यही अगर 18 घंटा वहाँ पर काम किया जाए तो वहाँ की मूल और मुलाकन और वहाँ की रेत पानी हेल्पर का वहाँ 130 रुपया देता है और 18 घंटे में वही करीबन वही 250 की लगभग हाजिरी होता है। यहाँ पर 450-400 का लगभग कमाई होता है। सोचिए कि झारखंड महाराष्ट्र के सामने कितने पीछे हैं और लोग यहाँ से सब जवाब मांगते हैं हमें कि क्या झारखंड में काम नहीं है, तो श्रम के मारे मेरा सर झुक जाता है और मैं यही कह पाता हूँ कि नहीं, उधर काम का वैसा बराबर काम नहीं मिलता है।
अब सुनते हैं क्या कहना है हमारे राधु जी का इस मुद्दे पर।
मैं राधु राय मोहरा जिला धनबाद झारखंड से। झारखंड से पलायित व्यक्तियों से बातचीत के कुछ अंशुल अंसारी जो झारखंड से सऊदी अरब गए थे, असिस्टेंट अकाउंट में कार्यरत थे, कंपनी में क्वार्टर में रहते थे, मेस में भोजन करते थे, मेहनत करते थे, मजदूरी ठीक ठाक मिलती थी, वतन की याद उन्हें खिंचलाई और झारखंड में आकर छोटा मोटा रोजगार करके अपनी जीविका का उपार्जन कर रहे हैं। अब्दुल करीम अंसारी जो सऊदी अरब गए हैं, लंबे समय के बाद झारखंड लौटते और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं वही काम करके। मोहम्मद अफजल अंसारी गुजरात जो फैक्ट्री में इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे, वहाँ के लोगों के काफी उपेक्षा के शिकार होते थे कि झारखंड में नौकरी नहीं, आप लोग हमारे यहाँ आकर रोजगार के मतलब जो साफ कर रहे हैं, काफी तनाव में वो रहते थे। ये गुप्ता महाराष्ट्र बेलीपुर जो सेलबाज पानी जहाज में काम करते थे, जो 8 मजदूर सेलबाज में रहते थे और सेलबाज की जर्निंग 17 से 16 घंटे हुआ करते थे, इस पार से उस पार जाने में और उस पार से इस पार आने में 17 घंटे की जर्निंग होती थी और उसी में खाना, उसी में पीना, उसी में ठहरना, मानो एक तरह का वो कैद कर लिए गए थे। वहाँ से उठकर वो झारखंड लौट आए हैं और अपनी व्यथा सुना रहे हैं। अजय कुमार राय मुंबई केमिकल फैक्ट्री में काम करते थे, वो भाड़े के मकान में रहते थे, 12 घंटा ड्यूटी करते थे, वहाँ उन्हें काफी परिश्रम करना पड़ता था, वहाँ से पुनः वो भागकर पुनः झारखंड लौट आए हैं। नारायण राय जो उड़ीसा गए थे, ठेकेदार के चंगुल में वो फंसे थे, ठेकेदार ने उसे फंसा कर मजदूरी कम दिया करते थे, दो चार महीने के बाद कुछ मजदूरी दिया करते थे, काफी प्रताड़ित करते थे, माड़ भात केवल खिलाया करते थे।
अब आ चला है पलायन पर एक गीत, प्रस्तुत करता है राजमणि जी।
नमस्कार, मैं पलामू से राजमणि यादव उर्फ छोटका दादा। पलायन से होने वाले नुकसान के संबंध में एक गीत। मंगराचे मैया के भौजी, अरे घर द्वार छोड़ी कहाँ जइबा, अरे घर द्वार छोड़ी कहाँ जइबा, ए मंगराचे भैया ए बुधनी के भौजी, काम धंधा मिलत नहीं से कहे तोहर गाँव में, बाल बच चल दल कहे ससराम में, तो दुख दुख सह फिर अइबा, ए मंगरा के मैया ए बुधनी के भौजी, ए मंगरा के मैया तू कहाँ जइबा, ए बुधनी के भौजी तू कहाँ जइबा, बाल बच कैसे पढ़े जाते स्कूल में, सब कुछ लूट जाई पलायन के भूल में, तो पाया जब थक जाई कई खैबा, ए मंगरा के मैया ए बुधनी के भौजी, घर पर रह कर कर स्वरोजगार हो, आगे के विकास खातिर कर खुद विचार हो, तो कर से पलायन कुछ नहीं पैदा, ए मंगरा के भैया ए बुधनी के भौजी, ए मंगरा के मैया तू कहाँ जइबा, ए बुधनी के भौजी तू कहाँ जइबा, एला घर रह के काम कीजिए, पलायन मत जाइए, ये मेरा विचार है, धन्यवाद।
तो श्रोताओं, इन प्रस्तुतियों के संग हमारे पलायन अभियान की 10वीं और अंतिम कड़ी का आज हो रहा है समापन। पर आप निराश न हो, क्योंकि आप लोगों का इस विषय से जुड़ाव देखकर झारखंड मोबाइल वाणी ने यह निर्णय लिया है कि अब से पलायन के विषय से जुड़ी सारी खबरें रोज शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच चलाई जाएगी। मैं सरस्वती झारखंड मोबाइल वाणी की ओर से आप सभी श्रोताओं को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप सबों ने अपने इस अभियान में इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और आशा करती हूँ कि आने वाले समय में भी आप लोग ऐसे ही अपनी भागीदारी निभाएंगे। तो श्रोताओं, इस कड़ी या पूरे अभियान पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, हमें बताएं कि आपको पलायन पर प्रस्तुत अभियान कैसा लगा, और अपनी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हमें अपनी प्रस्तुति को और बेहतर बनाने का मौका दें। तो अब दें अपनी प्रतिक्रिया नंबर 2 दबाकर।